अध्याय 7 चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ईरान अभिलेख से प्रकट होता है कि समुद्रगुप्त के अनेक पुत्र थे। इनमें दो पुत्रों के नाम थे रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। नागों के साथ विवाह संबंध। पुनः ताम्रपत्र से प्रकट होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह नागकुल संभूता कुबेर नागा के साथ हुआ था। डॉक्टर राय चौधरी और डॉक्टर मजूमदार का यह मत ठीक नहीं प्रतीत होता कि यह विवाह स्वयं चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। इसका कारण यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसी कुबेर नागा से उत्पन्न अपनी पुत्री का विवाह 380 ईस्वी के लभवाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। विवाह के समय प्रभावती की आयु कम से कम 15 वर्ष की रही होगी, अतः उसका जन्म 365 ईस्वी में हुआ होगा। हम जानते हैं कि समुद्रगुप्त ने लगभग 375 ईस्वी तक राज्य किया था, अतः समुद्रगुप्त के जीवन काल में ही उसकी पौत्री प्रभावती गुप्ता का जन्म हुआ होगा। इससे स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा का विवाह स्वयं समुद्रगुप्त ने ही किया होगा। संभवतः नागवंश को पराजित करने के पश्चात समुद्रगुप्त ने किसी नाग नरेश के साथ मित्रता करके उसकी राजकुमारी के साथ अपने पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह कर दिया। वाकाटकों के साथ विवाह संबंध। पुनः ताम्रपत्र से विदित होता है कि इसी कुबेर नागा से उत्पन्न अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन प्रथम के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। निश्चित रूप से यह एक कूटनीतिक विवाह था। चंद्रगुप्त द्वितीय शक राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। उसके इस कार्य में पड़ोसी वाकाटक राज चंद्रगुप्त को शकों के विरुद्ध सहायता दे सकता था। यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि पृथ्वी सेन ने चंद्रगुप्त द्वितीय को किसी प्रकार की सहायता दी थी अथवा नहीं, परंतु इस विवाह संबंध से भविष्य में गुप्त वंश को लाभ अवश्य पहुंचा। रुद्रसेन द्वितीय ने केवल 5 वर्ष तक राज्य किया। उस समय उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अल्पायु थे, अतः प्रभावती ने अपने पुत्रों की संरक्षिका के रूप में कुछ काल तक राज्य किया। इस काल में प्रभावती को अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय से महत्वपूर्ण सहायता मिली। रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती गुप्त के शासन काल में वाकाटक राज्य पर गुप्तों का बड़ा प्रभाव रहा। पहला, रुद्रसेन द्वितीय ने अपना वंशानुगत शैव धर्म को छोड़ दिया। उसने गुप्तों का वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया। दूसरा, विवाह के पश्चात भी प्रभावती अपने प्रति गोत्र को ही धारण करती रही। तीसरा, संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री की सहायता करने के लिए कुछ गुप्त पदाधिकारी भी वाकाटक राज्य में भेजे थे। यही कारण है कि प्रभावती के पुनः ताम्रपत्र में गुप्त लिपि का प्रयोग हुआ है। चौथा, प्रभावती गुप्ता ने अपने अभिलेखों में अपने पति की वंशावली न देकर अपने पिता की वंशावली दी है। कदम्बों के साथ विवाह संबंध। इस समय कुंतल पर कदम्ब वंश का राज्य था। तालकुंड अभिलेख से प्रकट होता है कि कदम्ब नरेश काकुस्थ वर्मन ने अपनी पुत्रियों का विवाह गुप्त आदि राजवंशों में किया था। टोटा सरकार का मत है कि काकुस्थ वर्मन ने अपनी एक पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन से किया था और अपनी दूसरी पुत्री का विवाह संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय के किसी पुत्र अथवा पौत्र के साथ किया था। कुछ साहित्यिक आधारों पर भी गुप्तों और कदम्बों का घनिष्ठ संबंध सिद्ध होता है। क्षेमेंद्र की औचित्य विचार चर्चा से प्रकट होता है कि कालिदास ने कुंतलेश्वर दौत्य नामक एक ग्रंथ लिखा था। इससे यह प्रकट होता है कि कालिदास किसी समय कुंतल राज्य में दूत बनकर गए थे। क्षेमेंद्र ने कालिदास का एक श्लोक भी उद्धृत किया है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कुंतल राज्य का शासन वास्तव में चंद्रगुप्त द्वितीय ही चला रहा था। पूर्ववर्ती भोज के श्रृंगार प्रकाश का ही कथन है कि कुंतल नरेश ने अपने राज्य का भार चंद्रगुप्त द्वितीय पर डाल दिया था और स्वयं भोग विलास में लिप्त था। कुंतल नरेश का तात्पर्य कदम्ब नरेश से है। शक विजय। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का उल्लेख किसी गुप्त अभिलेख में नहीं हुआ है, परंतु इसका प्रमाण अन्य साक्ष्यों से मिलता है। पहला, उदयगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त द्वितीय के सामंत सनकानिक महाराज के एक दान का उल्लेख है। इसकी तिथि 82 गुप्त संवत अर्थात 401 ईस्वी है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शक राज्य पर आक्रमण करने के लिए पूर्वी मालवा को आधार बनाया गया होगा और इस युद्ध योजना में स्थानीय सामंत सनकानिक महाराज का भी साथ होगा। दूसरा, 93 गुप्त संवत का एक अभिलेख सांची में मिला है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकादव द्वारा सांची के बौद्ध विहार को दिए गए दान का वर्णन है। इसमें आम्रकादर्व की अनेक युद्धों में विजयों का उल्लेख है। संभवतः सेनापति आम्रकादेव चंद्रगुप्त द्वितीय के सैनिक अभियान के संबंध में भी इस प्रदेश में आया होगा। तीसरा, एक अन्य उदयगिरी गुहालेख चंद्रगुप्त द्वितीय के युद्ध मंत्री वीरसेन शाव का उल्लेख करता है, जो संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के लिए निकले हुए अपने स्वामी के साथ इस प्रदेश में आया था। एक ही प्रदेश में सामंत सेनापति, युद्ध मंत्री और सम्राट का होना यह संकेत देता है कि चंद्रगुप्त ने शक राज्य पर आक्रमण करने की बड़ी तैयारी की थी और उसने अपने साम्राज्य के बड़े बड़े पदाधिकारियों को पूर्वी मालवा में एकत्र किया था। इन अभिलेखों में एक की तिथि 82 गुप्त संवत है और दूसरे की 93 गुप्त संवत। इससे यह भी अनुमान किया जा सकता है कि शकों के विरुद्ध चंद्रगुप्त द्वितीय का अभियान दीर्घकालीन था। चौथा, दक्षिणी भारत में शक वंश का अंतिम नरेश रुद्र सिंह तिथि था। इसके पश्चात हम यहाँ किसी भी शक नरेश का नाम नहीं सुनते। यह नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। इसकी मुद्राओं पर अंतिम तिथि 31 मिलती है। इस तिथि इकाई की संख्या विलुप्त हो गई है, वह 0 और 9 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। इस आधार पर रुद्रसिंह द्वितीय के शासन की अंतिम तिथि 310 से 319 के बीच रखी जा सकती है। यह शक संवत की तिथि है, जो 388 ईस्वी और 397 ईस्वी के बीच होगी। पांचवा, शक विजय के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के अनुकरण पर अपनी चांदी की मुद्राएं चलाई। इन मुद्राओं पर उसकी सर्वप्रथम तिथि 9 गुप्त संवत मिलती है। इसमें इकाई की संख्या विलुप्त हो गई है, जो 0 और 9 के बीच में कोई संख्या रही होंगी। इस प्रकार इस प्रदेश में चंद्रगुप्त की सर्वप्रथम तिथि 90 गुप्त संवत और 99 गुप्त संवत के बीच रखी जा सकती है। ये तिथियाँ 409 ईस्वी और 418 ईस्वी के बराबर हुई। छठवां, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंह शैली की मुद्राएं चलाई। इनमें वह सिंह का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इन मुद्राओं पर उसकी उपाधि सिंह विक्रमः मिलती है। इसमें संभवतः उसकी शक नरेश रुद्रसिंह तिथि पर विजय का संकेत मिलता है। गुजरात और सौराष्ट्र में सिंह मिलता है, अतः यह भी अनुमान किया जाता है कि सिंह शैली की मुद्राएं इन प्रदेशों की विजय की स्मृति में निर्मित कराई गई थी। सातवां, भारतीय जनश्रुति चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी बताती है। इस विरुद्ध से भी उसके शक विजय का बोध होता है। विजय की तिथि, उपयुक्त जो तिथियां दी गई हैं उनके आधार पर चंद्रगुप्त की शक विजय 388 ईस्वी और 418 ईस्वी के बीच रखी जा सकती है। परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय ने 412 ईस्वी तक शासन किया था, अतः शक विजय 412 ईस्वी के पूर्व की ही हुई होगी। मेहरौली स्तंभ लेख का चंद्र, दिल्ली के मेहरौली में एक लौह स्तंभ पर एक अभिलेख खुदा हुआ है, जो निम्नलिखित सूचना देता है। पहला, चंद्र नामक एक राजा था। दूसरा, उसने अपने भुजबल से अधिराज्य की स्थापना की। तीसरा, उसका शासनकाल दीर्घकालीन था। चौथा, वंग युद्ध में उसने सम्मिलित रूप से आए हुए सबको भगा दिया। पांचवा, युद्ध में सिंधु नदी के सात मुखों को पार करके उसने वाहलिकों को पराजित किया। छठवां, उसके शौर्य समीर से आज भी दक्षिणी समुद्र सुगंधित है। सातवां, जिस समय यह अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था उस समय तक वह राजा मर चुका था। आठवां, राजा वैष्णव धर्मावलंबी था। नौवां, उसने विष्णुपद नामक पर्वत पर विष्णु भगवान का ध्वज स्थापित किया। समीकरण, चंद्रगुप्त मौर्य CHC सेठ के मतानुसार चंद्र नामक के राजा चंद्रगुप्त मौर्य था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने भुजबल से राज्य प्राप्त किया था और उसका हिंदू कुश तक विस्तार किया था। दक्षिण भारत का भी कुछ भाग अवश्य उसके अधीन था। उसका शासन दीर्घकालीन था, परंतु अनेक आधारों पर इस मत का खंडन किया जा सकता है। पहला, किसी भी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं होता कि चंद्रगुप्त मौर्य वैष्णव था। अपने जीवन के अंतिम चरण में वह जैन हो गया था। दूसरा, मेहरौली स्तंभ लेख की लिपि मौर्य काल के बहुत बाद की है। कनिष्क, किसी समय डॉक्टर रमेश चंद मजुमदार का विश्वास था कि चंद्र नामक राजा कनिष्क था। यह मत विशेष रूप से एक खोतानी पांडुलिपि के ऊपर निर्भर है, जिसमें कनिष्क को चंद्र कनिष्क कहा गया है। पुनः कनिष्क के राज्य में वाहलिक था और उसने दीर्घकाल तक शासन किया था। परंतु इस मत के विरुद्ध अनेक तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला, किसी भी प्रमाण से यह सिद्ध नहीं होता कि कनिष्क ने बंगाल जीता था। दूसरा, इसी प्रकार उसने दक्षिणी भारत की भी विजय न की थी। तीसरा, वह बौद्ध था, वैष्णव नहीं। चौथा, मेहरौली स्तंभ लेख की लिपि कुषाणों के बाद की है। कुछ समय बाद स्वयं डॉक्टर मजूमदार ने ही अपने इस मत का परित्याग कर दिया। चंद्रवर्मन महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के मतानुसार चंद पुष्करण का राजा चंद्रवर्मन था। इसका प्रमुख आधार इन पंक्तियों का एक अभिलेख है, जो पश्चिमी बंगाल के बांकुरा जिले में सुनिया पर्वत पर उत्कीर्ण है। इसमें पुष्करणाधिपति महाराज चंद्रवर्मन का उल्लेख है। यह राजा महाराज सिंहवर्मन का पुत्र था। यह राजा भी वैष्णव था। इस मत के अनुसार पुष्करण राजस्थान के जोधपुर में स्थित पोखरण था। शास्त्री जी का मत था कि यह चंद्रवर्मन वास्तव में दशपुर के वर्मन वंश में उत्पन्न हुआ था। 461 मालव संवत के मंदसौर अभिलेख में जयवर्मन, सिंहवर्मन और नरवर्मन नामक तीन राजाओं के नाम मिलते हैं। इनमें से सिंहवर्मन चंद्रवर्मन का पिता था, जिसका नाम सुसुनिया अभिलेख में भी मिलता है, परंतु यह मत नितांत असंगत है। पहला, जोधपुर स्थित पोखरण के साथ पुष्करण का समीकरण संदेहपूर्ण है। पोखरण नामक एक स्थान पश्चिमी बंगाल में भी है, इसी के पास सुसुनिया पर्वत है। संभव है कि पुष्करण यही हो। इस प्रकार चंद्रवर्मन पश्चिमी बंगाल का कोई स्थानीय शासक रहा होगा। दूसरा, पुष्करण के चंद्रवर्मन का संबंध दशपुर के राजाओं के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। दशपुर के किसी भी अभिलेख में चंद्रवर्मन का नाम नहीं आता। इन अभिलेखों में पुष्करण का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मंदसौर का सिंहवर्मन सुसुनिया अभिलेख के सिंहवर्मन से भिन्न व्यक्ति था। तीसरा, पुष्करण ने कोई भी ऐसा दिग्विजयी नरेश उत्पन्न नहीं किया था जो संपूर्ण उत्तरी भारत में अपना साम्राज्य उत्पन्न करता। चौथा, सुसुनिया अभिलेख में न तो मेहरौली का उल्लेख है और न मेहरौली अभिलेख में सुसुनिया अथवा पुष्करण का। पांचवा, सुसुनिया अभिलेख का चंद्रवर्मन केवल महाराज था, जबकि मेहरौली का चंद्र अधिराज। छठवां, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि चंद्रवर्मन ने सिंधु के सात मुखों को पार कर वाहलिक जीता हो। चंद्रांश नाग डॉक्टर राय चौधरी मेहरौली अभिलेख के चंद्र का समीकरण नागवंश के सबसे बड़े शासक चंद्रांश के साथ संभव बताते हैं। इस नरेश का उल्लेख पुराणों में हुआ है, परंतु किसी भी साक्ष्य से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि चंद्रांश नामक किसी राजा ने संपूर्ण उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम डॉक्टर आर जी बशाक चंद्र का समीकरण गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम के साथ करते हैं। इस मत को निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है। पहला, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मेहरौली प्रदेश चंद्रगुप्त प्रथम के अधीन था। दूसरा, सिंधु नदी के सात मुखों को पार करके वाहिलक प्रदेश को जीतने की बात भी उसके पक्ष में सार्थक नहीं होती। तीसरा, दक्षिणी भारत से उसका कोई संबंध नहीं था। चौथा, उसका शासन सुचीर था, इस बात का भी प्रमाण नहीं है। पांचवा, इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि वह वैष्णव धर्मावलंबी था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, अधिकांश विद्वान चंद्र का समीकरण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के साथ करते हैं। इनमें विशेष उल्लेखनीय है डॉक्टर जायसवाल, डॉक्टर अल्टेकर, डॉक्टर डांडेकर, डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर दिनेश चंद सरकार आदि। इस समीकरण के पक्ष में अनेक बातें कही जा सकती हैं। पहला, चंद्रगुप्त द्वितीय की ताम्र मुद्राओं पर उसका नाम केवल चंद्र मिलता है। दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय निसंदेह वैष्णव था, गुप्त अभिलेखों में उसे परम भागवत कहा गया है। तीसरा, रामगुप्त के निर्बल शासन काल में गुप्त साम्राज्य की दयनीय अवस्था हो गई थी के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भुजबल से उसे फिर स्थायी बनाया और उसकी सीमाओं का विस्तार किया। चौथा, उसका शासन सुचीर था। पांचवा, भारत का पश्चिमोत्तर प्रदेश निश्चित रूप से उसके अधीन था। मथुरा में सर्वप्रथम उसी का एक स्तंभ लेख मिला है जिसकी तिथि 61 गुप्त संवत है। उसकी कुछ ताम्र मुद्राएं दक्षिणी पूर्वी पंजाब में मिली हैं। छठवा, बंगाल का समतट प्रदेश समुद्रगुप्त के अधीन था। संभव है कि रामगुप्त के शासन काल में उसने स्वतंत्रता घोषित कर दी हो और उसे पुनः अपने अधिकार में करने के लिए चंद्रगुप्त ने बंगाल में युद्ध किया हो। रघुवंश में कालिदास ने रघु की विजय का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उसने वर्गों को पराजित करके गंगा की धाराओं के बीच के प्रदेश में अपने जय स्तंभ गढ़वाए। संभव है कि इस वर्णन को लिखते समय कालिदास की दृष्टि में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की विजय रही हो। यहाँ यह बात ध्यान रखने के योग्य है कि गंगा स्रोतांतरेषु का अर्थ भागीरथी और पद्मा नदियों के बीच का प्रदेश हो सकता है या समतट प्रदेश समझा जा सकता है। इसके विरुद्ध प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी ने मेहरौली अभिलेख के बंग को बलूचिस्तान के मकरान तट पर माना है। सातवां, वाहलिक शब्द विवादास्पद है। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार और डॉक्टर दिनेश चंद सरकार इसका अर्थ बैक्ट्रिया मानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की बैक्ट्रिया विजय को सिद्ध करने के लिए रघुवंश में वर्णित रघु विजय का साक्ष्य भी प्रस्तुत किया जाता है। इसके अनुसार पार्शिकों को जीतने के लिए रघु ने थल मार्ग से प्रस्थान किया और वह वक्षोत तक जा पहुंचा। इसके विरुद्ध डॉक्टर डी आर भंडारकर तथा डॉक्टर बशाक आदि विद्वान वाहलिकों को पंजाब में मानते हैं। वाहलिक शब्द से नदियों के प्रदेश पंजाब का बोध होता है। इसी प्रकार सिंधु के सप्तमुखानी के विषय में भी मतभेद है। साधारणतया सप्तमुख से सात नदियों का बोध होता है। ये है पंजाब की पांच नदियां और काबुल एवं कुनार। इन्हें पार करने के लिए पंजाब में जाना पड़ेगा जहां से बैक्टीरिया को मार्ग जाता है। कभी कभी सप्तमुख खानी से सिंधु डेल्टा का अर्थ लगाया जाता है। इस पर रुद्रदामन प्रथम के समय से शकों का अधिकार था। संभव है कि गुजरात और काठियावाड़ की विजय के पश्चात चंद्रगुप्त इस प्रदेश में आया हो और यहां से होते हुए पंजाब गया हो। इस प्रकार निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मेहरौली स्तंभलेख का आशय चंद्रगुप्त की पंजाब विजय से है अथवा बैक्टीरिया विजय से। आठवां, मेहरौली अभिलेख का कथन है कि चंद्र के वरियानील से दक्षिणी समुद्र अब भी सुगंधित है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह पंक्ति रामकुमार के रूप में चंद्रगुप्त द्वारा अपने पिता समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ विजय में दी गई सहायता की ओर संकेत करती है। दक्षिण में चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक राज्य एवं कदम्ब राज्य में अपना प्रभाव विस्तृत किया था। हो सकता है कि यह पंक्ति उसके इसी प्रभाव की ओर संकेत करती हो। कभी कभी आपत्ति की जाती है कि यदि मेहरौली अभिलेख का चंद्र चंद्रगुप्त द्वितीय था तो उसने अपने इस लेख में अपनी वंशावली और उपाधियों को उत्कीर्ण क्यों नहीं कराया। इस संबंध में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चंद्रगुप्त मेहरौली एक सम्राट अथवा विजेता के रूप में नहीं गया था। वह वहाँ एक भक्त के रूप में गया था, अतः उस विनीत व्यक्ति के रूप में अपनी राजकीय परंपरा के आडम्बरों को व्यक्त नहीं करना चाहा। तिथि, मेहरौली स्तंभ लेख में कोई तिथि नहीं है, परंतु उसकी लिपि निश्चित रूप से गुप्तकालीन है। फिल्ट महोदय इसकी लिपि को समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख के समान बताते हैं। दानी महोदय ने इसे 5वीं शताब्दी के प्रारंभ की बताते हैं। मथुरा में चंद्रगुप्त द्वितीय का 61 तिथि का एक स्तंभ लेख मिला है। इस आधार पर डॉक्टर भंडारकर ने यह माना था कि मथुरा प्रदेश को चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुषाणों से जीता था, परंतु यह मत नितांत असंगत है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मथुरा के नागवंश को चंद्रगुप्त ने पराजित किया था और मथुरा प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। राज्य विस्तार, मेहरौली अभिलेख और ताम्र मुद्राओं से प्रकट होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य की पश्चिमी सीमा कम से कम पंजाब तक अवश्य थी। पायन के वर्णन से प्रकट होता है कि मध्यदेश उसके साम्राज्य में था। पूर्व में वह बंगाल तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त द्वारा अधीन किया हुआ बंगाल का डवाक प्रदेश भी उसके अधीन होगा। यह बात कामरूप के विषय में भी मानी जा सकती है। बशाल में उसके पुत्र एवं गवर्नर गोविंद गुप्त की सील मिली है, इससे बिहार भी उसके अधीन सिद्ध होता है। दक्षिण पश्चिम में सिंधु डेल्टा, गुजरात और काठियावाड़ पर उसका अधिकार था। दक्षिण के वाकाटक एवं कदम्ब वंश उसके प्रभाव क्षेत्र में थे। उत्तर में उसका साम्राज्य कश्मीर की दक्षिण सीमा को छूता था। इस प्रकार चंद्रगुप्त के समय गुप्त वंश एक अखिल भारतीय शक्ति बन गया। राजधानी, इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पायान ने इसे मध्य देश का सबसे बड़ा नगर बताया है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शक विजय के पश्चात चंद्रगुप्त ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन में स्थापित की थी। कुंतल की जनश्रुति उसे पाटलिपुत्र और उज्जैनी पूर्वाधीश्वर दोनों उपाधियों से पुकारती है। अश्वमेघ, श्री जी रत्नाकर ने नगवा में एक पत्थर का घोड़ा पाया है, इस पर चंद्रगु लिखा हुआ मिलता है। इसके अनुसार यह घोड़ा चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेघ का प्रमाण प्रस्तुत करता है, परंतु यह साक्ष्य संदिग्ध है। सामंत, साक्ष्य से चंद्रगुप्त द्वितीय के कुछ सामंतों के नाम ज्ञात होते हैं। यह सामंत उसके साम्राज्य के विभिन्न भागों में राज्य कर रहे थे। पहला, गोविंद गुप्त। ब्लाक ने वशाण के उत्खनन में अनेक राजकुमारों राजमुद्राओं का पता लगाया। इनमें एक राजमुद्रा पर महाराज गोविंद गुप्त का नाम मिलता है। इसे महाराजा अधिराज चंद्रगुप्त और महादेवी ध्रुव स्वामिनी का पुत्र बताया गया है। इससे प्रकट होता है कि गोविंद गुप्त अपने पिता चंद्रगुप्त के अधीन तीर भक्ति प्रांत का गवर्नर था। दूसरा, स्वामीदास। 63 तिथि के इंदौर ताम्रपत्र में स्वामीदास का नाम मिलता है। इसे बल्ख का शासक कहा गया है। संभवतः बल्ख मध्य भारत में था और वहाँ स्वामीदास चंद्रगुप्त का गवर्नर था। तीसरा, विश्वामित्र स्वामी। डॉक्टर भंडारकर ने बेसनगर में एक राजमुद्रा प्राप्त की थी, इस पर महाराज श्री विश्वामित्र स्वामी का नाम मिलता है। संभवतः यह भी चंद्रगुप्त द्वितीय का सामंत था। चौथा, सनकानिक। 82 तिथि के उदयगिरी गुहा लेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के एक अन्य गवर्नर का नाम विदित होता है। यह था महाराज सनकानिक। के पिता का नाम राज विष्णुदास और पितामह का नाम महाराज छगलग था। इससे प्रकट होता है कि सनकानिक वंश 3 पीढ़ियों से सामंत पद पर कार्य कर रहा था। पांचवा, त्रिकमल। 64 तिथि का गया अभिलेख मिला है, इसमें महाराज त्रिकमल नामक एक सामंत का उल्लेख है। धार्मिक नीति, चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्मावलंबी था। उसकी मुद्राओं और गुप्त अभिलेखों में से परम भागवत कहा गया है। मेहरौली स्तंभ लेख में से स्पष्ट रूप से वैष्णव के रूप में प्रदर्शित किया है। उसने विष्णुपाद नामक पर्वत पर विष्णु ध्वज स्थापित किया था। फिर भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने सहिष्णु धार्मिक नीति का पालन किया। उसने अपने व्यक्तिगत धर्म को दूसरों पर लादने की चेष्टा की और न ही धार्मिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया। राजकीय पद सभी के लिए समान रूप से खुले हुए थे। उदयगिरी गुहा लेख से विदित होता है कि उसका का युद्ध मंत्री वीरसेन साब शैव था। उदयगिरी में उसने शंभु भगवान को एक गुहा अर्पित की थी। साक्षी अभिलेख से प्रकट होता है कि चंद्रगुप्त का सेनापति अम्रकादर्व बौद्ध था। उसने साक्षी के बौद्ध विहार को प्रतिदिन 5 भिक्षुओं को भोजन कराने रत्नगिरी में दीप जलाने के लिए 25 दीनार और एक गांव दान दिया था। पायान के विवरण से भी यही सिद्ध होता है कि देश में पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता था और जनता स्वतंत्रता पूर्वक अपने इष्ट देवों की उपासना करती थी। शासनकाल मथुरा स्तंभ लेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन की प्रथम तिथि 61 गुप्त संवत अथवा 380 ज्ञात होती है। उसी लेख से यह भी ज्ञात होता है कि यह चंद्रगुप्त के शासन के 5वें वर्ष की तिथि है। दूसरे शब्दों में चंद्रगुप्त कम से कम 375 ईस्वी में सिंहासनासीन हुआ था। उसके शासन की अंतिम तिथि 93 गुप्त संवत साक्षी अभिलेख से प्रकट होती है। इससे प्रकट होता है कि उसने कम से कम 412 ईस्वी तक अवश्य राज्य किया। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम की प्रथम तिथि 96 गुप्त संवत अर्थात 415 ईस्वी के बिलसद अभिलेख से प्रकट होती है। इससे अनुमान किया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का अंत 412 ईस्वी और 415 ईस्वी के बीच कभी हुआ होगा।